ठीक है, उस कारण पर हम अभी विवाद नहीं करेंगे विकासवादी जी, हम इस पर चर्चा करेंगे बाद में, जो संशय हमारे मन में है उन संशयों को उपस्थित करेंगे। पर अभी आप यह तो बताइए कि आपने कहा कि यह जो है परंपरा, जीवन की परंपरा, जीवन का प्रवाह अमीबा से निकला है, आप कहते हैं यह विकास का प्रवाह अमीबा से निकला है और कई ऐसी योनियों में से होकर के गया और मनुष्य तक पहुंचा है, आपने यह कहा? हाँ मैंने कहा। अच्छा आप ये बता सकते हैं कि जैसे मनुष्यों में भी हम भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य पाते हैं, कई मनुष्य होते हैं जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं, जैसे हम देखें भगवान श्री राम को देखें, भगवान श्री कृष्ण को देखें, भगवान बुद्ध को देखें, चैतन्य को देखें, अपने जमाने में श्री राम कृष्ण को देखें। अब ये ऐसे हैं जो महापुरुष हैं जिन्होंने सचमुच अपनी क्षुद्रताओं को जीत लिया है, ऐसा लगता है कि ये मनुष्य नहीं है बल्कि मनुष्य से बहुत ऊपर उठ गए हैं। तो ये जो ऐसे दिखाई देते हैं ये किस कारण दिखाई देते हैं? ये जो निकलते हैं इस विकास के प्रवाह में ऐसे भी तो मनुष्य आते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं? इनके संबंध में आप कुछ बता सकते हैं कि इस प्रकार मनुष्य मनुष्य में इतना जो भेद दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है? तो विकासवादी ने कहा कि हमें तो भाई नहीं मालूम, हम यह नहीं बता सकते कि एक शंकराचार्य कैसे पैदा हो जाता है, एक बुद्ध, एक कृष्ण, एक राम कृष्ण, एक चैतन्य, एक ईसा, यह कैसे पैदा हो जाता है यह तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा विकासवादी से फिर दूसरा प्रश्न किया वेदांती ने, अच्छा यह बताइए कि आप यह तो कहते हैं, अच्छा यह जो आपका विकास का क्रम है इसमें चैतन्य का कहां पर स्थान है? यह जो मनुष्य में चेतना आ जाती है तो यह जो चेतना आती है तो कहां से आती है? क्या चेतना अमीबा से आती है? कहा कि नहीं, अमीबा में कोई चेतना नहीं है, चेतना अमीबा से नहीं आती, यह कॉन्शियसनेस अमीबा से नहीं निकलता, तो कहां से निकलता है? प्रश्न पूछा। विकासवादी ने कहा कि देखो जैसे कई रसायन एक साथ मिलते हैं तो एक नया तत्व पैदा हो जाता है, तो इसी प्रकार मैं समझा तो नहीं सकूंगा पर यह मैं तुमसे कहता हूं, विकासवादी वेदांतवादी से कह रहा है, यह मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो जिस समय विकास का प्रवाह चलता है अमीबा से निकल करके, तो उस प्रवाह की प्रक्रिया में कुछ रसायन ऐसे एक साथ मिल जाते हैं और एक स्थान पर आकर के चेतना प्रकट हो जाती है। तो इसका मतलब थे तो बड़ी हंसी बात ऐसे हंसी लगती थी और ऐसा लगता था कि यह क्या कहा है, 84 लाख योनि की बातें कही गई हैं। वस्तुतः यह तो कुसंस्कार है, अंधविश्वास है, अरे किसी ने गिना थोड़े ही है, हमारे पूर्वजों ने कहीं बैठ करके इन योनियों को गिना, कितनी प्रकार की योनियां हैं और 84 लाख योनियों को कैसे करके गिना होगा, यह हम कहा करते हैं, परंतु यह उनकी सूक्ष्म बुद्धि का परिचायक है। आज का जो जीव शास्त्री है 128 लाख योनियां मानता है, अब कैसे उसने गवेषणा की? उसने आखिर यह जो ज्ञान प्राप्त किया तो वह कोई अध्याधुन ज्ञान तो प्राप्त नहीं किया, उसने प्रयोग किया होगा, उसने तब स्पीसीज कलेक्ट की होंगी और संग्रह करके उनकी छानबीन की होगी, अलग अलग स्पीसी को अलग अलग किया होगा और उसके बाद उसने घोषणा की कि हाँ 128 लाख योनियां हैं। तो हमने जब 84 लाख योनियों की बात कही तो हमें हंसी आती थी, हमें ऐसा लगता था कि हमारे पूर्वज ये सब कुसंस्कार संपन्न थे और ये अंधविश्वासी थे, इनको मालूम नहीं था, पर आज जब विज्ञान कहता है 128 लाख योनियां हम चुप हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बात तो कहां पर कैसे सही है, और फिर हमें आश्चर्य भी लगता है कि हमारे पूर्वजों ने इतने पहले कैसे करके इन योनियों के संबंध में देखा। अब ये जो थोड़ा सा अंतर है कि पूर्वजों ने कहा 84 लाख योनि और विज्ञान कहता है 128 लाख योनि, यह जो अंतर है इस अंतर को हम समझा सकते हैं। एक तो अंतर हो सकता है, एक कारण यह हो सकता है कि एक जो हम योनियों का अंतर स्पष्ट करते हैं, योनियों का विभाजन करते हैं, तो इस विभाजन की पद्धति के कारण यह अंतर पड़ सकता है। जैसे हम शायद दो कीड़ों को एक ही योनि में मानते हो और पर यह जो आज का विज्ञान है वह कहता है दोनों एक ही योनि के नहीं है, ये दोनों अलग अलग योनि के हैं, हम इन दोनों को अलग अलग योनि का मानेंगे। बहुत संभव है यह जो विभाजन की पद्धति रही हो, हमने जहां पर दो योनियों को एक माना हो वहां पर विज्ञान ने उनको बाइफर्केट कर दिया, कहा हो कि ये दोनों योनियां अलग अलग हैं, इनको हम अलग अलग नॉमेनक्लेचर देंगे, अलग अलग योनियों में रखेंगे, एक कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है
है कि तब प्राचीन काल में हमारे पुरुषों के पास सूक्ष्म इतना देखने के यंत्र ना रहे होंगे, या जिसे हम सूक्ष्म वीक्षण अनुवीक्षण यंत्र कहते हैं, वह यंत्र तब भले ना रहे होंगे। आज तो कितने यंत्र हैं, हम सूक्ष्म से सूक्ष्म योनि को भी देख लेते हैं यंत्र की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से, और बड़े बड़े पावरफुल माइक्रोस्कोप हैं। तब ये माइक्रोस्कोप नहीं रहे होंगे।
तो एक कारण यह भी हो सकता है कि हमारे पास वैसे यंत्र नहीं थे, औजार नहीं थे इन योनियों को देखने के, जबकि आजकल विज्ञान के जमाने में हमारे पास अच्छे अच्छे औजार आ गए हैं जिनके सहारे हम इन योनियों को देख ले सकते हैं। यह एक दूसरा कारण हो सकता है। पर मूल बात यह है कि हमने जो 84 लाख योनि की बात कही और विज्ञान आज 128 लाख योनि की बात कह रहा है, तो बात तो एक ही है। वे भी योनि मानते हैं, हम भी योनि मानते हैं, परंतु विज्ञान एक बात नहीं मानता। वह क्या नहीं मानता? वह यह नहीं मानता कि एक मनुष्य मरेगा और फिर उसके बाद मनुष्य के रूप में पैदा होगा, यह उसकी मान्यता नहीं है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य का यह जो एक जीवन है, बस यही जीवन उसके लिए पर्याप्त है। जैसे मैं मनुष्य बना तो पहले शायद मैं और कुछ रहा हूंगा, इसके पहले मैं मनुष्य नहीं था, मनुष्य योनि में था, अब मैं मनुष्य बना हूं। तो विज्ञान की मान्यता यह है कि मरने के बाद मैं फिर से मनुष्य नहीं बनूंगा, बस यही मेरी कहानी खत्म हो गई, यह विज्ञान मानता है। पर वेदांत तो क्या कहता है? अरे यह तो तुम्हें परंपरा मनुष्य योनि की कितनी लंबी मिली, तुम कब से मनुष्य होते आए हो। ठीक है, एक समय था जब तुम विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार अनिवा से चलते रहे, 128 लाख योनियों में से गुजरे और तुम मनुष्य बन गए। और उस मनुष्य बनने के बाद वेदांत कहता है कि तुम कब से मनुष्य बन रहे हो। मनुष्य बनते हो, फिर मरते हो, फिर मनुष्य योनि में जन्म लेते हो, फिर मरते हो, फिर मनुष्य योनि में जन्म लेते हो। और यह जो करते हो किस लिए करते हो? एक लक्ष्य को पाने के लिए करते हो। यह वेदांत हमारे समक्ष रखता है। तो जब विकासवादी ने ऐसा कहा तो वेदांतवादी चमत्कृत होता है, कहता ठीक है, आपने 128 लाख योनियों की बात तो कही, अच्छा हम लोग तो 84 लाख योनियों की बात करते रहे विकासवादी जी अत्यंत प्राचीन काल से। अच्छा देखिए विकासवादी जी, आप विज्ञान की बातें तो करते हैं भाई, परंतु आपकी कुछ बातों में वैज्ञानिकता नहीं है। पूछा विकासवादी ने, तुम ऐसी बात कैसे कहते हो कि कैसे मेरी बातों में वैज्ञानिकता नहीं है, या तुम कैसे कहते हो कि देखो, पहली बात तो यह है विकासवादी जी कि आप विज्ञान के क्षेत्र में यह मानते हैं ना, क्या आप कहते हैं कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, माने समथिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, आप ऐसी बात कहते हैं ना कि शून्य से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती, आप ऐसा मानते हैं कि नहीं? आप कहते हैं कि शून्य से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती, पहले से वह चीज थी, दूसरे रूप में थी, उसका रूपांतरण मात्र होता है, बस इतना आप मानते हैं ना कि जैसे शून्य से कोई चीज पैदा हो गई, ऐसा तो आप नहीं मानते? हाँ नहीं मानते हम लोग, शून्य से कोई चीज पैदा हो गई ऐसा नहीं मानते हम लोग, रूपांतरण मानते हैं। केवल जो चीज है अभी पैदा हुई दिखाई देती है, बस इस पहले भी थी वह दूसरे रूप में थी, ऐसा हम मानते हैं। तो फिर आप ये जो कहते हैं कि यह जो चेतना है, चेतना पहले नहीं थी और चेतना बाद में चलने पर विकास की प्रक्रिया जब थोड़ी आगे बढ़ी, जब विकास का प्रवाह थोड़ा आगे बढ़ा, तो पहले चेतना नहीं थी, फिर कुछ बातें एक साथ मिलती हैं, कुछ रासायनिक एक साथ मिलते हैं और फिर ये रसायन एक साथ मिलने के कारण यह चेतना उत्पन्न हो जाती है। यह जो आप कहते हैं यह तो वैसी बात हो गई जैसे कोई कहे कि शून्य से किसी चीज की उत्पत्ति हो गई। इसे आप समझाइए, आप तो कहते हैं शून्य से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती, तो यह जो चेतना उत्पन्न हो रही है फिर वह कहां से उत्पन्न हुई, उसका पूर्व रूप क्या था? यहां पर विकासवादी चुप हो जाता है, उसके पास कोई उत्तर नहीं है। अच्छा फिर इसके बाद वेदांतवादी कहता है, अच्छा देखिए मैं दूसरा प्रश्न यह करता हूं कि आपसे मैंने पूछा था ये जो महापुरुष जीवन में दिखाई देते हैं, जीवन के दूसरे छोर में, ये महापुरुष कहां से पैदा हो गए, इनके भीतर में इतनी पवित्रता दिखाई देती है, इतनी आत्मशक्ति दिखाई देती है, एक एक पुरुष सारी दुनिया को झंझोर करके रख देता है, तो यह जो ताकत एक एक व्यक्ति में दिखाई देती है, यह जो मानस दिखाई देता है, यह जो मनोबल दिखाई देता है, तो यह जो मनोबल है इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे, ये फिर कहां से उत्पन्न हुए, यह जो इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं इनकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे? विकासवादी ने कहा, भाई इसकी व्याख्या मैं नहीं जानता,
फिर वेदांतवादी ने पूछा, वेदांति ने कहा कि अच्छा इसका भी उत्तर आप नहीं दे सके, ना दे सके ठीक है, मैं आपसे फिर और तीसरा प्रश्न यह करता हूं। अच्छा देखिए, आपने तो कह दिया कि बस विकास की परंपरा अमीबा से शुरू होती है और शुरू होकर के वह गई कई योनियों में से होकर के लक्ष्य लक्ष्य योनियों में से फिर वह मनुष्य योनि तक जाती है। और आपसे जब मैंने पूछा कि क्या किसी लक्ष्य को पाने के लिए, आपने कहा कि नहीं। और फिर जब मैंने पूछा कि फिर वहां पर जाकर के क्या होता है, उस विकास के प्रवाह का क्या उसका नाश हो जाता है, तो आपने कहा नहीं, वह इसी प्रकार अनंत काल तक बहती रहती है। तो आपकी बात में मुझे दोष लगता है। क्या दोष लगता है विकासवादी जी? देखिए, विज्ञान में एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली, इट नो मोर रिमेन्स ए स्ट्रेट लाइन, इट बिकम्स ए सर्किल। विज्ञान में सिद्धांत यह है कि अगर एक सरल रेखा को अनंत दूरी तक हम फैला दें तो वह सरल रेखा नहीं रह पाती, वह एक वृत्त का रूप धारण कर लेती है। तो आप कहते हैं कि ये जो विकास की परंपरा अमीबा से शुरू हुई, वह मानो इसी प्रकार निकली, कई योनियों से गई, मनुष्य तक आई और अनंत काल तक ऐसा चलती रहेगी, यह तो बात कुछ गले नहीं उतरती है। और विज्ञान की दृष्टि से भी आपकी बात गलत है। तो विज्ञान तो यही कहेगा कि अनंत काल तो मानेगा, फिर वह एक वृत्त का रूप धारण कर लेती है। इसका मतलब कि अनंत काल तक ऐसे नहीं चलेगी, फिर तो वह वृत्त का रूप धारण कर लेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अमीबा से जो विकास की परंपरा शुरू हुई है और धीरे 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 अनंत काल तक चलते हुए फिर एक वृत्त को पूरा कर लेगी, यह तो ऐसा ही सिद्धांत उपनीत तो होता है। विकासवादी ने कहा भैया हमें नहीं मानते, हम इसे भी नहीं समझा सकते। तो वेदांति ने कहा फिर मैं समझा दूं, आपकी ही बात को लेकर के मैं समझा देता हूं, और मैं जब समझा देता हूं तो फिर आपको पुनर्जन्म मानना पड़ जाएगा, क्योंकि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के सहारे आप जिसे समझा नहीं पाते हैं उस प्रश्न को हम समझा देते हैं। हम वही मानेंगे विकासवादी जी, हम भी यही मानेंगे कि अमीबा से यह शुरू होता है, यह जो जीवन का प्रवाह है वह अमीबा से शुरू होता है और अमीबा से शुरू होकर के 128 लाख योनियों में से जाता है, और जाता है तो आपको सब बातें हम समझा देंगे, वेदांत के बल पर समझा देंगे कि यह कैसे एक वृत्त का रूप धारण करता है। यह बातें हम आपको समझा देंगे, उत्तर दे देंगे, और जब उत्तर देंगे तब आप मानेंगे तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को। विकासवादी कहता पहले बताओ तो सही, फिर सोचेंगे। तुम पहले बताओ तो सही कि किस प्रकार से तुम समझाते हो, तो हम देखेंगे इसको अगली बार कि यह जो वेदांति है इन प्रश्नों का सक्षम उत्तर वह देता है। वह कहता है कि मैं विकासवादी के इन सारे सिद्धांतों को मानता हूं कि ठीक है, अमीबा से जीवन का प्रवाह शुरू हुआ, वह चला 128 लाख योनियों में से गया, मनुष्य योनि तक आया, और यहां पर आकर के विकासवादी जो कुछ बता नहीं पाता है, वेदांति कहता मैं बताता हूं क्या होता है, किस प्रकार से होता है, और वह पूरा बताएगा। वह एक बुद्ध पैदा होता है, कृष्ण पैदा होता है, राम पैदा होता है, गीता पैदा होता है, चैतन्य रामकृष्ण पैदा होता है, तो उसके पीछे का कारणभूत तत्व क्या है, यह जो चैतन्य निकलता है, कॉन्शियसनेस निकलता है, यह चैतन्य कहां से निकलता है, यह सारा का सारा तत्व तो वेदांत ही समझाता है, और इस भाषा में समझाता है जिसको हम विज्ञान की भाषा कहते हैं। तो उस पर हम अगली बार विचार करेंगे। तो हमने जैसा कहा कि अगली बार और 7 तारीख को और 14 तारीख को यही क्रम चलता रहेगा, यह जो और भी दो प्रवचन होंगे कर्मवाद और पुनर्जन्म पर दो प्रवचन होंगे, इन दोनों प्रवचनों में विज्ञान की दृष्टि से उस पुनर्जन्म को समझने का प्रयास करेंगे, और जो प्रश्न इस विकासवादी जो वेदांती ने उठाए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर विकासवादी नहीं दे सका है, उन प्रश्नों का उत्तर हम अगली बार देने की चेष्टा करेंगे। आइए हम शांति बात करें।
रविवार को कर्म और पुनर्जन्म इस विषय को विचार के लिए लिया था। श्रीमद् भागवत में देवर्षि नारद प्राचीन वर्ग को पुनर्जन्म के संबंध में सीख देते हैं, बताते हैं किस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का भोग करने के लिए भिन्न भिन्न योनियां धारण करता है। पिछली चर्चा में हमने डार्विन का विकासवाद लिया था यह बताने के लिए कि जीवन की प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक इस प्रकार समझना चाहता है। यद्यपि 150 वर्षों में विज्ञान के चिंतन में भी बहुत प्रगति हुई है, परंतु जिस प्रकार से विज्ञान अपना चिंतन शुरू करता है और जैसे जैसे अपने चिंतन में वह विकास को प्राप्त होता है, वह प्रक्रिया हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। अत्यंत संक्षेप में पिछली चर्चाओं का सार बता दें, एक वैज्ञानिक और वेदांती, या यूं कह लें कि एक विकासवादी और एक वेदांती, इन दोनों में आपस में चर्चा हो रही है। विकासवादी ने जीवन की प्रक्रिया को समझाते हुए अपना मत व्यक्त किया कि अमीबा से जीवन का प्रारंभ होता है। अमीबा कहते हैं जीवाणु कोष को, जिसको हम कह सकते हैं कि जीवन की सबसे छोटी इकाई, जिसका ग्रहण मनुष्य की बुद्धि कर सके। जीवाणु कोष से जीवन की धारा बहती है, कई योनियों में से होकर के जाती है, 128 लाख योनियों में से जाती है और फिर मनुष्य होती है। इसके बाद जीवन का प्रवाह कहां जाता है? क्या वह खत्म हो जाता है अथवा वह चलता ही रहता है तो कहां जाता है? विकासवादी के पास इसका कोई उत्तर नहीं, यह छोड़ करके कि मनुष्य योनि में जब जीवन का प्रवाह आता है तो भी इसी प्रकार वह बहता जाएगा, पर लक्ष्य क्या है यह विकासवादी बता नहीं पाता। कई प्रश्न वेदांती ने किए थे, अच्छा यह बताइए कि चैतन्य को आप कहते हैं कि बीच में प्रकट हो जाता है, तो यह जो चैतन्य बीच में प्रकट होता है कैसे होता है? विज्ञान तो कहता है कि शून्य में से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, केवल वस्तु का रूपांतरण होता है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में आप आज जानते हैं कि मौलिक शक्ति एक ही है, उस शक्ति का रूपांतरण भिन्न भिन्न ऊर्जाओं में होता है। एक ही शक्ति है जो ताप के रूप में प्रकट होती है, वही फिर चौंबकीय शक्ति के रूप में प्रकट होती है, वही विद्युत के रूप में प्रकट होती है। इसका मतलब यह है कि केवल रूपांतरण होता है, किसी नई चीज का जन्म नहीं होता। शून्य से कोई नई चीज पैदा नहीं होती, कोई वस्तु विद्यमान है, केवल उस वस्तु के रूप में परिवर्तन होता है। तो विकासवादी से वेदांती ने कहा कि आप लोग तो यह मानते हैं कि शून्य से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, तो फिर यह चैतन्य कहां से उत्पन्न होता है? विकासवादी ने कहा कि हमें नहीं मालूम। और तब वेदांती ने कहा कि हम आपकी बात को समझा देते हैं और आपके ही स्थान पर खड़े रह करके, ऐसा नहीं कि हम भिन्न बातों की धारणा करेंगे बल्कि यह कि आप जैसा जैसा मानते हैं हम भी जीवन प्रक्रिया को वैसे ही मान लेते हैं और वैसा ही मान करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं और समझाता है। वेदांती उस प्रक्रिया को समझाता है, वह यह कहता है कि देखिए आप मेरे कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके थे, मैंने आपसे पूछा था कि यह जो महान शक्तिगत पुरुष व्यक्ति उत्पन्न होता है ऐसा लगता है कि इसके भीतर में बड़ी शक्ति है, बड़ी क्षमता है। एक बुद्ध पैदा हो गया, एक राम पैदा हो गया, कृष्ण पैदा हो गया, चैतन्य पैदा हो गया, ईसा पैदा हो गया, तो आपका इस संबंध में स्पष्टीकरण क्या है? यह कहां से उत्पन्न होता है? मनुष्य में इतनी जो पूर्णता दिखाई देती है, यह पूर्णता आपके अनुसार कहां से निकली? आप यह कुछ बता नहीं सके थे। फिर आपने यह कहा था कि यह जो विकास की प्रक्रिया है यहां तक आई है मनुष्य योनि तक और इसी प्रकार अनंत काल तक चलती रहेगी, तो आपकी बात में दोष है विज्ञान की दृष्टि से। क्या दोष है? कहा वेदांती ने कि देखिए विज्ञान कहता है कि कोई सरल रेखा अनंत दूर तक नहीं जा पाती, इस स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली बिकम्स ए सर्कल। किसी सरल रेखा को अनंत दूरी तक फैला दो तो वह एक वृत्त का रूप धारण कर लेती है। तो आप कहते हैं कि अनंत काल तक विकास की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, लक्ष्य बता नहीं पाते आप। और फिर आपकी बात में यह दोष आता है, यदि अनंत काल तक ऐसे ही चलना है तब तो वह एक वृत्त का रूप धारण करेगी, तो यह ठीक आप समझा नहीं पा रहे हैं। विकासवादी कहता है कि तो क्या तुम ही समझा पाते हो? वेदांती ने कहा कि मैं समझाने का प्रयास करता हूं। क्या प्रयास है तुम्हारा? वेदांती ने पहले ही कहा कि देखिए पहली बात तो यह है कि आप केवल इवोल्यूशन को मानते हैं, पर जो ही आप इवोल्यूशन को मानते हैं आप भूल जाते हैं कि आपको इन्वोल्यूशन भी मानना पड़ेगा। एन इवोल्यूशन प्री सपोजेज एन इन्वोल्यूशन। जैसे मैं जन्म को स्वीकार करूं और मृत्यु को स्वीकार न करूं तो यह तो बेबुनियादी बात हो गई। दोनों को मुझे स्वीकार करना चाहिए। दिन को स्वीकार करता हूं तो रात को स्वीकार करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार वेदांती ने कहा कि आप इवोल्यूशन को तो स्वीकार करते हैं, आप क्रम विकास को तो स्वीकार करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि जब हम विकास कहते हैं तो संकोच को भी स्वीकार करना पड़ता है कि कहीं कुछ संकुचित हुआ था जिसका कहीं पर विकास होता है। और आप केवल कहते हैं कि क्रम विकास हो रहा है, देर इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, व्हाट वॉज देयर इन्वॉल्व, वह संकुचित क्या था जिसका विकास हो रहा है। आपके पास तो कोई उत्तर नहीं होगा क्योंकि आप क्रम संकोच को स्वीकार नहीं करते, केवल क्रम विकास को मानते हैं। विकासवादी ने कहा कि हां तुम बात तो ठीक ही कह रहे हो, हम विकास को स्वीकार करते हैं, हम संकोच को स्वीकार नहीं करते। तो कहा फिर वेदांती ने कि पहली भूल तो आपकी यहीं पर हो गई तर्क की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, कि जब आपने इवोल्यूशन को स्वीकार किया तब आपके मन में तुरंत प्रश्न उठना था कि ऐसा क्या इन्वॉल्व हो गया है, ऐसा क्या संकुचित हो गया है जिसका कि विकास हो रहा है। यह कभी नहीं सोचा। विकासवादी ने कहा कि हां यह तो नहीं सोचा। तो वेदांती ने कहा कि हम यहीं से शुरू करते हैं, हम यह मानते हैं कि अमीबा से निकल करके जीवन का प्रवाह बहता है, कई योनियों में से जाता है, 128 लाख योनियों से जाता है, निम्नतर योनि से उच्चतर योनि में प्रयाण करता है। यह जो आपने कहा सब हम मान लेते हैं और इसे मान करके आपके प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। तो हमने क्या कहा? पूछता है वेदांती, पूछता है विकासवादी से कि हमने क्या कहा, इस पर आप ध्यान दीजिए।
हम कहते हैं कि जब हम विकास को स्वीकार करते हैं तो संकोच को भी स्वीकार करना पड़ता है। जब हम कहते हैं कि उस अमीबा से विकास की धारा निर्गत होती है तो हमें इस प्रश्न पर विचार करना पड़ता है कि अमीबा के भीतर में क्या संकुचित था, क्या ऐसा जाकर के इन्वॉल्व हो गया था जो कि धीरे धीरे विकसित होता है। आप बता सकते हैं उस अमीबा के भीतर में क्या संकुचित था? विकासवादी कहता है या तो हम नहीं बता सकते। तो वेदांति ने कहा कि मैं बताता हूं। हम लोग यह मानते हैं वेदांत की दृष्टि से कि वह जो अमीबा है उसके भीतर में सारा चैतन्य इन्वॉल्व है, संकुचित है। उस बीजाणु के भीतर में, जीवाणु के भीतर में सारी पूर्णता निहित है, छिपी हुई है, और वह जो छिपी हुई पूर्णता है वही धीरे धीरे विकसित होती है। और जो हम देखते हैं एक परफेक्ट मनुष्य, पूर्ण मानव को देखते हैं, तो यह सारी की सारी पूर्णता उसी अमीबा के भीतर में बंद थी और वह बंद हुई पूर्णता अपने को विकसित करने का प्रयास कर रही है, यह हम मानते हैं। और इससे हम आपको यह समझा देंगे। वेदांती विकासवादी से कहता है कि विकास का कारण क्या है? आपने कारण बताया दो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और दूसरा सेक्सुअल या नेचुरल सिलेक्शन। ये दो कारण बताए कि निम्नतर योनि से उच्चतर योनि में यह जो जीवन का प्रवाह है क्यों जाता है, किस लिए जाता है, उसका कारण क्या है? तो आपने कारण बताया कि पहला कारण तो यह कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे बलिष्ठ है वह जीवित रहेगा। बड़ी मछली छोटे मछली का ग्रास कर लेती है। तो आपने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मानो जीवन में यह जो हो रहे प्रतिद्वंद्विता है, यह प्रतिद्वंद्विता ही सब कुछ है। आपका जो सिद्धांत है उससे तो यही निकलता है। वेदांती ने कहा विकासवादी से कि आपका सिद्धांत होड़ को प्रश्रय देता है, प्रतिद्वंद्विता को प्रश्रय देता है, क्योंकि जो योग्यतम होगा वह बचा रहेगा, जो कमजोर है वह नष्ट हो जाएगा। यही तो आप कह रहे हैं। और इसीलिए आप कहते हैं कि यह जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इस सिद्धांत के द्वारा इस होड़ को भी तो समर्थन मिलता है। फिर आपने जो यौन निर्वाचन की बात कही, प्राकृतिक निर्वाचन की बात कही, तो वहां पर भी बुनियादी तो होड़ ही है, प्रतिद्वंद्विता ही है। उस प्रतिद्वंद्विता के कारण विकास होता है ऐसा आप मानते हैं। और इसलिए आपके सिद्धांत में एक बड़ी खामी यह हो जाती है कि वहां पर झगड़ों के लिए सारी गुंजाइश है, कि मनुष्य एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे को काटे, जो योग्यतम है वह सबका नाश करके सबका सफाया करके बचा रहे जीवन में। यही सिद्धांत तो उपनीत होता है। तो फिर आपका कोई मॉरल नहीं रह जाता, कोई एथिक्स नहीं रह जाता। यदि यही सिद्धांत जीवन में कारगर हो कि जो सबसे बली मनुष्य है या जो सबसे बली है वही जिंदा रहेगा, तब तो दुर्बलों को जीने के लिए कोई जगह ही नहीं है। दुर्बल तो नष्ट ही हो जाएंगे, उनका तो खात्मा ही कर देना चाहिए। फिर यही उपपन्न होता है। खींच करके विकासवादी ने कहा तो तुम क्या बताते, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उत्तर है कि जो इस प्रतिद्वंदिता से हमें उबार लेता है? वेदांती ने कहा यही तो मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले हमने यह माना कि यह जो अमीबा है इसके भीतर में वह अनंत चेतना जाकर के बंद है, वह जो अनंत पूर्णता है वह जाकर के छिप गई है। अब यह पूर्णता अपने को प्रकट करने का प्रयास करती है और इस प्रयास में वह निम्नतर योनि से उच्चतर योनि में जाती है। बस यह प्रयास है, इसमें प्रतिद्वंद्विता नहीं है, होड़ नहीं है, एक अमीबा है। अमीबा के भीतर में जाकर के यह सारी पूर्णता क्रम संकुचित हो गई, यह सारी की सारी चेतना जाकर के उसमें समा गई है। अब यह जो समाई हुई छिपी हुई चेतना है, छिपी हुई पूर्णता है, अपने को व्यक्त करने का प्रयास करती है। और व्यक्त करने का प्रयास जब करती है तो देखती है एक योनि में वह जीवन का प्रवाह आया। जब देखती है कि इस योनि में अपने आप को पूरा मैं प्रकट नहीं कर पा रही हूं, तो इसलिए वह उच्चतर योनि में जाती है, जिससे वह अपने आप को पूरी तरह से प्रकट कर ले। उस योनि में भी अपने को प्रकट नहीं कर पाती चेतना, इसलिए वह उच्चतर योनि में जाती है। वहां अपने को प्रकट करने की चेष्टा करती है, वह नहीं हो पाती, फिर इसलिए उच्चतर योनि में जाती है, इसलिए जाती है, एक एक करके उच्च से उच्चतर योनि में जाती रहती है, एक दिन मनुष्य योनि में आती है और मनुष्य योनि में भी देखती है कि चेतना पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाई, तो फिर मृत्यु के बाद मनुष्य रूप धारण करती है और उसमें भी पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाती, तो पुनः मनुष्य रूप धारण करती है, पुनः मनुष्य रूप धारण करती है, और इस प्रकार मालूम नहीं हजारों बार मनुष्य रूप धारण करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वह चेतना, वह पूर्णता जो छिपी हुई थी, अपने आप को पूरी तरह से प्रकाशित हो